और पिच में रहता है
और अपराधों को समझता है, वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव को मारना नहीं चाहिए, कूपकारी नहीं करनी चाहिए, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और उन्हीं से पिच करता है,
तो फिर क्या हुआ?
तो वो तो बद्रदेव हो जाता है, महा अपराध वो नहीं दूर होता है, और नहीं जान करके यदि कुछ करते हैं तो वो पहले रोज सुनते हैं हम लोग और फिर भी याद नहीं होती। जानते हैं कि ठाकुर जी की, गुरु जी की, वैष्णवों की सेवा करना चाहिए, कितनी नहीं करते, कहते हैं रुचि नहीं है, फिर कैसे होता? हम सुनते हैं प्रत्येक दिन श्रद्धापूर्वक भगवान के लीला कथाओं का चिंतन, सवेरे में कीर्तन, आरती और कुछ सेवा कम करना चाहिए। गुरु गृह में कैसा रहा जाता है ये भी हम लोग सुनते हैं। गुरु गृह माने रहना माने संतों का सुन, आज यदि पालन नहीं करेंगे तो ये सुन करके क्या? जो पालन नहीं करते हैं और सुनेंगे उनके लिए ये 20 वृक्ष हो जाता है। तो ये खूब सावधानी के साथ में, बड़ी मुश्किल से हम लोग बात बात छोड़ करके भगवान का भजन करने आए हैं, थोड़ी सी उत्तेजना में सब कुछ भूल जाते हैं। क्रोध को कंट्रोल में रखना चाहिए, सबसे मीठी बात सुननी चाहिए, व्यवहार सबसे नंबर है। यदि हमसे उच्च वैष्णव हमें कुछ डांट फटकार करें तो एकदम तू तकाली करके लड़ मत जाओ, सोचो समझो और विचार करके उनका अनुगत से नहीं चलो। तो हमारी बात सब मानेंगे और किसी की परस्पर नहीं मानेंगे तो फिर मत कहते क्या, तो वैष्णव की क्या हुई? इसलिए ये सब चीजें हैं सुनते हैं हम लोग और फिर भी नहीं पालन करते, वैसा भजन नहीं करेंगे। सवेरे जबते हैं कि कोई काम नहीं है, बैठे हैं बेकार के, किंतु यहां पर कीर्तन नहीं है। अरे कीर्तन एक जरूरी चीज है, भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम ठाकुर के, गोविंद दास के, वहां पर उनके परंपराओं के कीर्तन उसमें होते हैं, कुछ ना करें उसको दोहराएंगे तभी एक भजन हो जाता है, किंतु इसका मूल्य हम लोग उसी समय में जितने बाहर के काम उन्हीं समय सोएंगे, उस समय दांत धोएंगे, उस समय पैखाने जाएंगे, टट्टी जाएंगे, यही साधु संग है। दिन भर में तो थोड़ा सा समय वो होता है, अभी शाम का होता है। इसलिए भाई इस सेवा को भगवान का यह प्रेम देने वाली सेवा है ऐसा समझ करके सेवा करो। भगवान का प्रेम देने वाली ये हरि कथाएं हैं, उनको प्रेम से सुनो। यहां पर अनायासी जो चीज हो जाता है, ठाकुर जी की परिक्रमा, तुलसी की परिक्रमा, हरि कथा कहां मिलेगा जब 14 भुवन है, ऐसा तो कहां मिलेगा? एक आदमी यदि बाहर का आदमी मठ में आए उसका कितना खर्चा है? बाहर का एक गृहस्थ आए मठ में रहेंगे, बतलाओ जितने को कितना लग जाता है? कम से कम 20 रुपया भी रखा जाए तो 600 रुपया तो खाना और रहेगा तो उसके लिए भी तो रहने का भी तो ये है, कब ये साधु संग करेगा? अब तुम लोगों को सहज ही उपलब्ध है खाना कपड़ा लत्ता सब कुछ, और तब ही साधु संग नहीं होगा, उस समय में घूमेंगे क्या नहीं करेंगे, कोई समस्या लड़ेंगे झगड़ेंगे कैसे हो? और कितने बात हम भी यदि कुछ कार्य हमसे भी लड़ जाएंगे, क्योंकि अच्छा अभ्यास हो रहा है, पहले वैष्णव से होगा, इसके बाद में गुरु से होगा, और इसके बाद में किससे होगा? एकदम भगवान से, एकदम रिहाई हो जाएगी, ऐसा ही होता है। भजन मार्ग मर्यादा है, यदि हम लोगों का साधन मर्यादा है, मर्यादा के साथ अन्य तो मर्यादा ही कोई नहीं रहेगी, मर्यादा भंग साहित्य नारे महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं नहीं सह सकता। इसलिए ये सब चीजों को समझ करके देख करके मठ का व्यवहार कुछ सुंदर से होना चाहिए, परस्पर प्रीति होनी चाहिए, बाहर के लोग आए उनसे प्रीतिपूर्वक मिलेंगे, उनके अंदर में भक्ति भक्ति लाएंगे, यदि नहीं जानेंगे तो कैसे हो? एक एक श्लोक याद करे प्रतिदिन, जैसा साधु संघ में कहा गया, उसके भाव को समझे और उसको एक श्लोक अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करो। जैसे ये कह रहे हैं, हम लोगों ने इसका अर्थ बतलाया, भरत जी रघुगण राजा के प्रति बतला रहे हैं, अहो निजन्म अखिल सो जन्म शोभनम, कि जन्म भी पपरई अतमस्मिन न जदृषि केश जतकृतात्मनान महात्मनान ज प्रचुर समागम। अतः हे ब्रह्मन, मनुष्य जन समस्त जन्मों की अपेक्षा से तो रोजनी सुनते, इसमें नई सी कौन सी बात हो गई, कोई नई बात है इसमें, रोजी तो सुनते हैं। अरे सुनते हो किंतु अनुभव तो नहीं कर रहे, अनुभव करो तो क्यों। अखिल जन्मों की शोभा मनुष्य जन्म में ही केवल भगवत भक्ति हो सकती, दूसरे किसी जन्म में नहीं भगवत भक्ति होगी। इसलिए समस्त जन्मों की शोभा है भगवत भक्ति, ये मनुष्य जन्म में ही करूंगा अपने, आप सभी हमारे मान्य है किंतु करूंगा आपकी अपनी का, तो कैसे भक्ति होगी। हमको अपनी जितने अभ्यास हैं विचार हैं सबको छोड़ छाड़ कर जैसे गुरु वैष्णव कहेंगे वैसा चलूंगा, पहले मठ बास का यही सबसे पहला नियम। हमने अपने जीवन में जो कुछ सीखा है समझा है वो सब हम छोड़ दें और यहां पर नए संस्कार से सब सुनेंगे समझेंगे करेंगे, नया सभी कुछ अपने हृदय में भरेंगे और उसको पालन करने की चेष्टा। ये पहला पहले जिस दिन आएंगे उसी दिन प्रकट ये करना पड़ेगा, संकल्प प्रतिज्ञा। अपने विचारों को छोड़कर हम गुरु वैष्णव के विचारों को भागवत के विचारों को हम ग्रहण करेंगे। पहला भगवान की सेवा तब अपना स्वार्थ, सोना खाना पीना वैष्णव का आदेश पालना पालन कर, कई उपाधि कहते हैं कि वैष्णव का आदेश पालन करने के लिए गुरु का आदेश पालन करने के लिए कोटि कोटि वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट ठेका लेता हूं। यदि इसके लिए हमको सब कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, ये तो है भजन, भजन का संकल्प चाहिए। तो मनुष्य अखिल मनुष्य जन्मों की शोभा है भगवत भक्ति, ये मनुष्य जीवन में ही होती है। इसलिए कितनी उम्र हुई 24 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष, बड़े दिमाग से कहते हैं कि 80 वर्ष की उम्र हो, अरे ये तुम्हारा ये सब 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष का है, ये तो गया तुम्हारा रहा उतना ही, अभी कितना दिन रहेगा कोई गारंटी नहीं, इसी बीच में भोग भक्ति करो, तन मन धन विचार बुद्धि बाकी सब कुछ बात। इसलिए समस्त शरीरों में देवताओं का शरीर श्रेष्ठ है, किंतु उसकी क्या जरूरत है, उसमें तो भगवत भक्ति होगी नहीं। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सुंदर सुंदर, रशिया में बहुत सुंदर सुंदर शरीर वाले, किंतु क्या होगा, भगवत भक्ति का कोई संभावना नहीं। उनको अपना स्वभाव चरित्र बदलते बहुत मुश्किल है। हम लोग के आज ऋषियों की संतान होने से हमारे रक्त में कुछ कुछ है, सहज रूप में हो जाएगा। मान लो कि एक आदमी 25 वर्ष तक मांस खाया, इसके बाद में छोड़कर कहीं जा रहा है, किंतु मांस से ये जो शरीर गठित हुआ है इसका कुछ प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए उन लोगों के लिए बहुत भारी कठिन, बहुत चेष्टा करने पर भी पावने निमित्त धरातली विचरण करें। साधु लोग क्या करते हैं, महापुरुष लोग हैं, तीर्थों को पवित्र करने के लिए इस धराधाम में विचरण करते हैं, स्वर्ग में नहीं जाते। साधु लोग कहां मिलेंगे, नवद्वीप में मिल सकते हैं, मायापुर में मिल सकते हैं, गौरमंडल में मिल सकते हैं, महाप्रभु का पवित्र किया हुआ जो धामपुरी है वहां पर मिल सकते हैं, कुछ इस ब्रजमंडल में मिल सकता है। क्यों, एक तो साधु अपने से उच्च श्रेष्ठ साधुओं का संग करने के लिए आएंगे, और तीर्थों को पवित्र करने के लिए। तीर्थों में भजन करना जरा स्वाभाविक है, सरल है, कोई अधिक कष्ट नहीं। इसलिए भोगों की बात चिंता करके, खाने पहनने की ये सब अधिक चिंता छोड़ करके, कर्म की कुशलता छोड़ करके, सत्व का जो यथार्थ संग है उसको करो। संग माने क्या? संग माने सम्यक रूपेण, गमनम अनुगमनम, जैसा चलते हैं, जैसा कहते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा भजन करते हैं, ये परिपाटी को ग्रहण करने का नाम संग। यदि साधु के साथ में लाख वर्ष रहो और उनके विचारों का अनुगमन नहीं किया, जैसा बोलता है, जैसे चलते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बोलना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करना चाहिए, कैसे अष्टकालीय भगवान की सेवा करनी चाहिए, कैसे गुरु वैष्णव की सेवा होती, ये जल्दी नहीं हमने सीखा तो वैष्णव संघ नहीं हुआ। पहले भी बतला चुके हैं, विषय लोग जैसे विषय लोगों का संग करते हैं, उसी प्रकार से साधु लोग साधुओं का संग कर, जैसे उनकी सारी वृत्तियां उनमें आ जाती है, साधुओं की सारी वृत्ति उनमें आ जाती है। महत्व कैसे हैं उनके लिए बतला रहे हैं। ऋषिकेश जस कृतात्मना महात्मनम, अर्थात ऋषिकेश के जो लीला चरित्र हैं उनका जो जस है, उनसे जिनका चरित्र चित्त शुद्ध हो गया है और कोई कामना वासना नहीं, संत पुरुषों की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और वैष्णव की सेवा करते हैं और हरि भजन करते हैं निश्चिंत होकर के, ये लोग संत पुरुष। इसलिए जिनका ऋषिकेश का जस चिंतन करने से, वर्णन करने से, गुणानुवाद करने से जिनका चरित्र शोधित हो गया है, चित्त शोधित होने का लक्षण क्या है? विषयों के प्रति अनासक्ति और भगवान के चरणों में अनुरक्ति, वैष्णव की सेवा में अनुरक्ति, गुरु की सेवा में अनुरक्ति। यहां पर भगवान कहने से ही वैष्णव और गुरु और भगवान तीनों को समझते हैं। भगवान के प्रति तो खूब है दिखाते हैं, किंतु वैष्णव को सम्मान नहीं देते, उनका कदर नहीं करते, मर्यादा नहीं देते, तो भाई वो भगवान भी ग्रहण नहीं करेंगे। पंडित गुरु का तो सम्मान नहीं किया, भगवान का तो क्यों नहीं होगा? अरे भगवान वैष्णव भी, साधारण वैष्णव भी ये भगवत स्वरूपी है, इसलिए उनका भी असम्मान। कहिए ये वैष्णव तो ऐसे नहीं है, नहीं है, अब उनका चित्त शुद्धम होने जा रहा है, संकल्प जिन्होंने ले लिया है वो वैष्णव ऐसा समझो। त्रुटि हो सकती है कुछ, वैसे तो हम महापुरुषों को भी नहीं समझ सकते, उनमें हम त्रुटि खोजेंगे, परीक्षित महाराज में भी खोजेंगे, सुखदेव गोस्वामी में भी खोज लेंगे, व्यास में भी खोजेंगे, नारद जी के चरित्र में भी खोज लें, परंतु है नहीं। कृष्ण के चरित्र में खोजते हैं दुष्ट लोग, इसलिए भगवान के की कथाओं को, उनके जस को जो वर्णन करते हुए सुन करके जिनका चरित्र निर्मल हो गया, आप किसी की निंदा नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते, सबको मर्यादा देते हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं और सर्वक्षण भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा का अतिरिक्त कुछ नहीं, ऐसे लोगों को साधु समझो और इनका संग करना चाहिए। अथवा ऋषिकेश का कीर्तन जो है, उनके जो लीला कथाएं हैं, उनका नाम है जो कीर्तन करते हैं सब समय, और उसे उनका चरित्र चित्त पवित्र हो गया। जितने भी चित्त को पवित्र करने वाली बातें हैं, भक्ति हैं, उनमें नाम संकीर्तन सबसे। मैं तो समझता हूं कि उसके पहले कुछ श्रवण करना चाहिए, श्रवण नहीं करने से चित्त निर्मल नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान की कथाओं का, वैष्णव की कथाओं का, विशेष करके वैष्णव का चरित्र सुनने से हृदय निर्मल। जैसे रघुनाथ दास का, गोस्वामी का चरित्र निर्मल है, उनके चरित्र यदि श्रवण करें और वैसा करने की चेष्टा करें तो हमारा हृदय भी निर्मल।
अन्यथा लाख कोटि वर्ष नहीं होगा। कोटि जन्म यदि करे श्रवण को तब उतना पाए कृष्ण पद नहीं मिलेगा। लाख कोटि जन्म में भी दीक्षा लेने पर भी नहीं होगा, वो दीक्षा ही नहीं हुई। इसलिए समझो कुछ दीक्षाएं व्यवहारिक रूप में होती हैं और कुछ विद्वत रूढ़ी से होती है। विद्वत रूढ़ी मैंने क्या यथार्थ दीक्षा, और अविद्वत रूढ़ी मैंने एक अनुष्ठान कर दिया, दीक्षा दे दिया, उस शिष्य गुरु शिष्य क्या कर रहा है कोई भी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहा, बस दीक्षा हो गई। आपकी दीक्षा हो गई? हाँ मेरी दीक्षा हो गई। कब हुई? अरे 10 वर्ष पहले। एकादशी करते हैं तो नहीं तो नाम करते हैं हरि नाम? हाँ करता हूं। कितने तो कभी एक फेरा हो जाता है, और यदि काम अधिक रहता है तो उस दिन नहीं कर पाता हूं। अच्छा दीक्षा हो गया। कहा कृष्ण के संबंध में कुछ नहीं जानते। अच्छा आप दुर्गा जी की उपासना भी तो करते हैं? हाँ खूब करता हूं। और गणेश जी की? हाँ उनका बिना रोज पहले उनकी करता हूं। बहुत ठीक है, दीक्षा हो गई। हाँ दीक्षा यही ये दीक्षा से क्या होगा? कोई निष्ठा ही नहीं आई। एतादृश महत्वगंज जी ऐसे महात्माओं का समागम न हो। समागम माने क्या होता है? समागम उनके साथ में मिलना नहीं हो, और वो नहीं आए हमारे पास में, और उनका हम समागम है उसको हम ग्रहण न करें, तो देवता जन्म मनुष्य जन्म सब विफल, ये समझो। इसलिए आज ही से प्रतिज्ञा करो जितना भी कुछ होगा कष्ट हो हमारे इच्छा के विपरीत होगा किसी वैष्णव की मर्यादा को भंग नहीं करे, गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं करे, शास्त्रों के वचनों को यथाजथ पालन करने की चेष्टा करें, ऐसे संकल्प ले चाहिए। प्रतिदिन संग करें, यदि नहीं मिल रहा तो चैतन्य चैतामृत का संग करो, श्रीमद्भागवत का संग करो। और जो लोग इसका अर्थ समझते हैं कुछ जीवन में उसको ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ी सी कर्कशता है स्वभाव में पीछे और कुछ बातें हैं तो उसको ग्रहण कर लो, उसको असाधु मत समझो। स्वभाव के वर्ष से कुछ हो सकती है, कुछ दोष भी हो सकता है, इसलिए वो कहते हैं क्या रूप गोस्वामी न क्या देश के ही स्वभाव जल तई बपू शास्त्री काला कल उठा है, स्वभाव में कुछ रुखरा है, कुछ कठोर भाषी है, वैष्णव न मत विचार करो उठा एकदम दुधार गाय का लात सह लेते हैं, दूध देने वाली गाय का ऐसे सह लो। जे काल पर्यंत तो विषाभिमान सुन, जैसे फिर कहते हैं आगे नैषा मतिस्तावन पूर्व क्रमांग स्पिशक्तनर्थापगमोद दत्त महीयशान पात्र जो अभिषेकम निष्किंचनानंद न पिणी के जाव। यह किसका है? प्रहलाद महाराज। बतलाओ तो किसको कह रहे हैं प्रहलाद महाराज बतलाओ? आपने सबसे बुद्धि नहीं है गुरु को झंडा मत होकर पिताजी ने उनको झड़क दी गुरुओं को, हमारे बच्चे को तुमने क्या पढ़ाया? मैंने तो नहीं पढ़ाया, वो तो अपने आप हुआ नए स्वर्ग की अन्न बालो बदल, ये बालक ने स्वर्ग स्वाभाविक रूप में करा, हमने नहीं सिखलाया, दूसरों को ना उपदेश नहीं दिया। तब गुरु जी एकांत में ला करके कहे बेटा तुम हमारा शिष्य है तो बतलाओ तो तुमको किसने शिक्षा दी? ऐसा जो कृष्ण कृष्ण बोलो तो वो कह रहे हैं नहीं श्याम। इसका पहला एक और श्लोक है मति न कृष्ण पर तो सतो मिथो विपत्ते गृहता अदांत वो भी विषता तमीशम पुनः पुनश्चर्वित चर्पना। किसको किसको याद है जरा हाथ उठाओ तो, किसको किसको याद है? बस डुबा दिया नौका, यह नौका उद्धार होने वाली नहीं है, बड़ा मुश्किल है, नौका डूब गई अभी बात चल रही है ना नौका डूब करके काली ने कहा चली गई, खोजने से भी नहीं मिलेगा। और ये जानते नहीं ये कहां का प्रसंग है, तो कैसे होगा। ये दो तीन आदमी हैं बस, बाकी सबको कोई प्रयोजन नहीं है। कोई डर तुम्हारे उधर में बैठता है, कोई डर तुम्हारे उधर बैठता है, कीर्तन पाठ में आएंगे नहीं, कहीं शुभानंद क्या जानता है बेटा का, वो ये क्या नाम शुभानंद जी, और वो तो बच्चा है, वो क्या पाठ है, इनको पाठ ही नहीं करना आता है। महाराज जी जब बैठेंगे तो बैठेंगे, यह दुर्बुद्धि है। कुछ सुन समझो, आज एक श्लोक इतना भागवत का सबसे प्रसिद्ध श्लोक अभिजात में, कल जो भी इस श्लोक को कोई भी याद करके नहीं आएगा तो उसे बैठने देंगे, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, सबको निकाल देंगे यदि कल याद नहीं करके आए, यह समझ रखो। क्या है तुम रॉड, रॉड हाथ में ना रहे तो बच्चे नष्ट होते, अंग्रेजी कई कहावत है, यदि हाथ में छड़ी ना हो ना तो बच्चे सब बिगड़ जाते हैं, ले शासन की भी जरूरत है। कल हमने इस मठ में नहीं अच्छा तो जाओ, ऐसे लड़कों की जरूरत नहीं है जो ऐसा नहीं जाते पड़ेगा नहीं, तो क्या जरूरत है, ये तो क्लास है ना भाई। नैशा मतिस्तामत उर्क्रमांग्रिंग इसकी मैंने व्याख्या कर दी थी, प्रहलाद महाराज जी अपने गुरु जी को इसको बतला रहे हैं, मतिर्न कृष्ण इसके बारे में। ये मति भगवान में ऐसे नहीं होती, जो चर्बित चर्बित चर्बन करते हैं, चर्बित चर्बन कौन करता है, कुत्ता सुअर गधे ये सब, एक मांस रहित हड्डी है बस चर्बन करने वाले, मांस नहीं है हड्डी में, दूसरा निकाल लिया है और हड्डी को चूस रहा है और दूसरे कुत्ते ने उस पर आक्रमण कर दिया, वो हड्डी छीन लिया, वो चर्बित को भी वो चर्बन कर रहा है। कभी कभी कुत्ता कुछ खा लेता है गंदी चीज और घास खा करके और फिर उसी को खाता है, ये सब का तात्पर्य क्या है, इन विषयों को हमारे बाप ने खाया, हमारे दादे परदादों ने खाया और हम अभी खा रहे हैं और फिर उसी को चबा रहे हैं, उसे वैराग्य नहीं होता है, इसी का नाम है चर्बित। ऐसे लोगों की बुद्धि, ऐसे लोगों के द्वारा बुद्धि शुद्ध नहीं जो इसमें लगेगा, चर्बित चर्बन कर रहे हैं, उनका परामर्श मत लो, उनसे नहीं होगा और अपने भी बुद्धि नहीं जाएगी क्योंकि विषय में लगे, दोनों की बुद्धि के द्वारा भी नहीं होगा, उनसे परामर्श लेकर के करेंगे नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों से परामर्श न करो और अपने बुद्धि से भी मत चलो, चलो किसी के साथ साधु जो सब कुछ मिल सकता, तो ये लोग क्यों मत करो, इनकी बुद्धि बनी हुई है रस्सी से, त्रिगुण रस्सी, त्रिगुण जनता है रस्सी किसको कहते हैं, त्रिगुण एक रस्सी बनाया लंबा ना? ऐसे ऐसे अच्छा उसको ऐंठ दो और ऐंठ करके उसको तीन भाग कर दो, तो एक भाग को फिर उसके साथ में ऐसे ऐसे लगा दो और फिर उसको जो बचा हुआ है उसको उसमें लगा दो, एक तीन रस्सी को, जो रस्सी बनाने वाले हैं वो जानेंगे और दूसरे जो है नहीं, इसको त्रिगुण रस्सी बड़ा बड़ी मजबूत होता है, वो ये बड़े बड़े मोटे मोटे रस्से जो होते हैं वो त्रिगुण होते हैं, ऐसे ही वेदों की जो परिपक्व त्रिगुण की रस्सियां हैं वेद निर्मित, क्या क्या है वो वेद निर्मित, माता पिता की सेवा से बढ़कर के और कुछ नहीं है, माता पिता ही अतिथि ही भगवान है, दरिद्र ही नारायण है, आजकल एक नई धूम उठी है दरिद्र ही नारायण, दरिद्र नारायण की सेवा, ऐसे ही अक्षय स्वर्ग लाभ इत्यादि ये सब वेद की पुष्पित त्रिगुण मिश्रित ये रश्मियां इससे बंधे होते भगवान के लिए भजन नहीं करते ये लोग, जैसे शुक्राचार्य उनके पुत्रों की बुद्धि इसी में बदली, उसके द्वारा वो बदले, इससे ऊपर उठ करके भगवान का भजन का उपदेश नहीं दे सकते। इसलिए करें जब तक विषय अभिमान शून्य, विषय अभिमान शून्य किसको कहते हैं, विषय अभिमान शून्य निष्किंचन महत्व का संबंध हो। पहले पाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्त वेगम एतान वेगांज विषहेत धीर सर्वम अभिमान पत्री सस्या छिंत। इंद्रिया विषयों से उपरत हो, विषयों में न रहे, भोग की लालसा न रहे, अन्य अभिलाष शून्य हो, स्वर्ग त्याग मोक्ष तक कभी अभिलाषा जिसके हृदय में नहीं है, इस प्रकार के निष्किंचन संसार के किसी भी पदार्थ में यह है मेरा ये भाव नहीं रहता, इसको कहते हैं निष्किंचन महत्व। वे महत्पुरुषों की कुछ पदभूलि के द्वारा अभिषिक्त न हो। पदभूलि के द्वारा अभिषिक्त का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि यदि वैष्णव पदभूलि नहीं देते हैं तो उनको उठा करके पटक करके भी जबरदस्ती चरण धूलि को ले लिया जाए, इससे भक्ति हो जाएगी, भाई इससे नहीं होगी। जैसे दुष्ट लोग शिव विग्रह को पत्थर मान करके तोड़ने जाते हैं तो शिव विग्रह उसके पहले चले जाते हैं, उसी तरह से वैष्णव की जबरदस्ती चरण धूलि से नहीं होगा। जैसा कितना धरता धरती करने लगते हैं, वैष्णव को पटक देते हैं उठाकर और उनके चरण धूलि को अपने सिर पर रगड़ते हैं, या वैष्णव दुर्बल है उनके चरण को अपने सिर पर रखकर कैसे रगड़ते हैं, ये सब दुर्बुद्धि है, इससे भक्ति नहीं। चरण धूलि क्या है, उनकी सेवा, उनकी प्रतिवासना ही चरण धूलि है, ऐसा समझो। आइए नहीं कह करके जबरदस्ती चरण धूलि रगड़ेगा पटक करके, अब वैष्णव गिर गए चरण धूलि लगा करके ऐसे रगड़ रहे, भाई इससे और अपराध होगा। अरे लेने की चाह तो ऐसे लोग वैष्णव जा रहे हैं उनको मालूम नहीं पड़ा कि जहां पर उन्होंने चरण रखा है आगे चले गए, पीछे जाकर के चरण की धूलि को लेकर के श्रद्धापूर्वक हृदय में लगाओ, यहां पर लगाओ, आंखों में लगाओ, ये सब तरीके श्रद्धा। वैष्णव बैठ रहे हैं वैष्णव प्रसाद पाने के लिए, गुरुदेव आप थोड़ा सा उच्छिष्ट दे दी, गुरु जी बड़े संकोच में क्या करूं, नहीं गुरुदेव अरे मैं उच्छिष्ट नहीं देता, आप जरूर थोड़ा सा इसमें से निकाल करके दे दिए, ये प्रसाद भी नहीं है, स्थूल बुद्धि वाले ऐसा पर ऐसा मत करने जाओ, इसे भक्ति नहीं, इससे नहीं। अरे यदि उच्छिष्ट ही लेना है तो झाड़ू मंडल झाड़ू ठाकुर जी उनका पदानुसरण करो, कैसे नीच जाति के ऊपर से जाति के नीच जाति लगते हैं, नीच जाति नहीं है, और उनको आम ले गए खूब बेस्टमती अच्छा मिठा दे दिया खाने के लिए, उन्होंने खा करके वो चले गए वहां से, और उन्होंने खा करके ठाकुर जी को भोग लगा करके खा करके फेंक दिया, तो पीछे से आकर के उस भूरे से आम की गुठली को चाटे को कृष्ण प्रेम में पीते, ये तरीका है। इन्हें जब गुरु जी बैठे हैं वो भी ऐसा विरासन लगा करके बैठ गए, गुरुदेव आप कुछ स्थिति दीजिए, एक ग्रास दीजिए, आप जो खा रहे हैं उसी को चबाए हुए से निकाल करके, वाह वाह कैसी गुरु भक्ति वैष्णव, ये सब तरीका नहीं। निष्किंचन बतला रहा हूं, निष्किंचन कौन है और उनकी सेवा भी कैसी, जो कृष्ण के अतिरिक्त तो उनका कोई भी नहीं है ऐसा समझने वाले, जिनके काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य जो विषयों के भोग की अभिमान, ये सचमुच में अष्टकालीय सब समय कृष्ण की सेवाओं का चिंतन स्मरण और कीर्तन करते, ये लोग निष्किंचन वैष्णव है। सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी कुछ भी उनका नष्ट नहीं हुआ, ऐसे महापुरुष लोग सारी जगत की संपत्ति मिलने पर भी चित्त इधर उधर नहीं होता, ये निष्किंचन वैष्णव है। किंतु भक्ति में थोड़ा सा कुछ हो गया प्राण उनका चला जाएगा, ऐसे महत्वों के चरण की धूलि से अभिषिक्त यदि नहीं हुआ तो भगवान के चरणों को हमारी मति नहीं छू सकती है। इसलिए ऐसे वैष्णवों का संग चाहिए। तात्पर्य इसका सनातन गोस्वामी दे रहे हैं। इस श्लोक के पहले ही एक श्लोक बतला है, मते कृष्ण परतो, इसके पहले कहा है अति और अभी नापे विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशया जे बहिर्थ समान। दुराशय दुष्ट माने दुराशय, दुराशय किसको कहते हैं, जिनका आश्रय माने हृदय मलिन। क्या मलिन? विषय के द्वारा, अपराध के द्वारा, अनर्थ के द्वारा मलिन है। ऐसे लोगों की मति भगवान के चरणों में नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। यदि तनिक भी विषय है, वकील कहते हैं एक चुनसुरा के हमसे, आप लोगों के गुरुजी बड़े बहुत उत्तम व्यक्ति, उनकी एक शिक्षा हमने याद कर लिया, वही पालन जीवन में करते हैं, तो क्या ये समझो कि सारे जितने हैं ये भगवान के सेवक हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं वकालत में जाता हूं, मैं समझता हूं कि आज भगवान की ये सेवा कर रहा हूं, झूठ भी बोलता हूं तो भगवान की सेवा कर, और जितने रुपए मिलते हैं अपनी पत्नी को देता हूं तो समझता हूं ये भगवान ही हैं, इनको दे रहा हूं, अपने बेटे को देता हूं। मैंने कहा आपको बहुत अच्छा समझा। अच्छा एक बात समझो, हम लोग भगवान की कुछ सेवा करते हैं तो हाँ, अच्छा एक दिन का वेतन हमको दे देंगे या आपको जो कोर्ट में मिल गया वही हमको दे, हम सब भगवान के साथ, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, हम अपनी बीबी को ही देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, बीबी का अतिरिक्त और कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं। ये लोग धूर्त है, उनकी अंतिम दशा भी वैसे ही बीती। इसलिए ये विचार सब ठीक नहीं है। तो सब जिनका अंतःकरण सब समय विषयों से मलिन है, विषय से मलिन है, इसका मतलब क्या हुआ, अहंकार भी उसमें है, विषय में भोकी लालसा है, ये मेरा है ये उनका है, और उसके लिए विवाद, दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, साधु गुरु वैष्णव की आदेश नहीं पालन करेंगे, समझो क्या है, चित्त मलिन, इसको साफ करना है। जो निष्कपट होंगे इनको समझेंगे, नहीं समझेंगे वैष्णव लोग जब अंगुल दिखा करके कहेंगे कि ये तुम्हारा दोष है, अंततः तो उसको मान करते हैं, हम उसको सुधार करने की जो चेष्टा करते हैं उनको भी वैष्णव मान लिया जाए। आज वो कहने पर भी झगड़ते हैं, लड़ते हैं, नहीं मानते भाई वैष्णव, इनका आशय बहुत ही दुराशय है। वे लोग भगवान को कभी नहीं जान सकते हैं जिनका अंतःकरण ऐसा है, अशुद्ध है, इसलिए उसको शुद्ध करने की चेष्टा करें। कैसे शुद्ध होगा, वैसे एक ही उपाय है, क्या उपाय, ऐसे जो निष्किंचर वैष्णव है उनके चरणों की धूलि से अभिषेक। यहां पर धूलि माने कृपा, कृपा माने उनकी हरि कथा, आदेश, निर्देश, ये सब। वो बहुरथ मानी अर्थात इंद्रियों के भोगों को ही वो समझते हैं, कैसे भोग किया जाता है और भोग में आसक्ति है, बस इसी को जानते हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानते। इसलिए ऐसे जब जिनकी दुष्ट मति है, दुराशय है, उनसे अनर्थ और बढ़ेगा, मति और मलिन हो जाएगी। इसलिए मलिन यदि शुद्ध करना चाहते हैं तो भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं तो निष्किंचन जो वैष्णव हैं उनका संग करो। फलत, आप सनातन गोस्वामी करें फलत कंक्लूजन, महत अनुग्रहों का भी यदि अभाव है, भगवत भक्तों ऐसे महापुरुषों की कृपा का यदि अभाव है, उन्होंने नहीं कृपा की, हमने उनकी कृपा नहीं ली, तब किसी प्रकार से तत्व नहीं समझ में आएगा, उसकी मति कभी भी भगवान को स्पर्श नहीं करेगी और वो हरि गुरु वैष्णवों की भी सेवा नहीं कर सकती। इसलिए ऐसे हृदय यदि किसी का है निष्कपट रूप में उसको शुद्ध करने की चेष्टा करो। कैसे होगा, उन्हीं के बाणियों से, ऐसे निष्किंचन वैष्णव के संग नहीं होगा। तस्मै स्कंद में सनातन गोस्वामी अब और दे रहे हैं, भवा पवर्गो भ्रमतो जदा भवे जनस्य तरहे चित सत्सनागम सत्संगमो जरही तदैव सदगतौ परावरे से त्वयि जायते रति, परावरे से त्वयि जायते रति। हे अच्युत, आप अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, और हम लोग क्या करते हैं, स्वभाव से पुनः पुनः भी च्युत होते हैं। इसलिए आपके वचन में हमारा विश्वास है, आप अच्युत हैं, आपके वचन अच्युत है, आपका स्वभाव अच्युत है, आप अपने स्वभाव से कभी नहीं गिरते। अर्थात दूसरों पर दया करने का आपका स्वभाव है, भक्त बत्सल है, ये कभी से च्युत नहीं होते। हे अच्युत, अपना अनुग्रह कर, आपके अनुग्रह से। ये कौन कह रहा है? मुचकुंद का। मुचकुंद का उपाख्यान सुना है? कभी सुना है? कहां का है? विष्णु पुराण का है ना महाभारत का, ना कहां का है? कि चैतन्य चरितामृत का प्रसंग है, कहां का है भाई मुचकुंद का? हैं? भागवत का है, कहां पर है मुचकुंद का प्रसंग? कहां का भाई तुम बोलो तो पंडित जी? वो कहां का प्रसंग है ये मुचकुंद जी? ये ब्रज क्या है ना? कहां का प्रसंग है? कौन जगह का है? ब्रज का लीला का वर्णन है ना कहां का है? फिर कौन समय जाते ये तो बुझो, तुम बतलाओ तो कहां का प्रसंग है, कौन जगह का है? कौन खदेड़ रहा था? काल्य जमन, काल जमन। और वो जब जल गया मुझको उनकी दृष्टि से, तो वो जग करके देखा श्रीतांबरधारी भगवान को, देखा हाथ जोड़ करके ये प्रभु से विनय कर रहे हैं। हे अच्युत, आपके अनुग्रह क्रम से संसार में संलग्न जो पुरुष हैं, मनुष्य हैं, अब जब उनका भोग करते 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 कोटि कोटि जन्मों के बाद में जब क्षय काल समाप्त होता है, संसार अब नष्ट होने के लिए तैयार होता है, तब साधु संग होता है। अर्थात जब साधु संग कब होता है? संसार उसका भगवान की कृपा से, अब वो संसार में जन्म मरण उनको नहीं देना है, उन पर कृपा हो गई तो क्या करेंगे? कृपा करके, अनुग्रह करके, तब वे साधु संग लाभ करते हैं। देत ईश बिनु हेतु सने ही, बिना किसी कारण के ही साधु संग भगवान दे देते हैं। हम लोगों ने ऐसा कोई पूर्व जन्म में किया है कि नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु साधु की किसी की निष्कपट कृपा हो गई, जिसे साधुओं का संग मिल गया, गुरु जी का संग मिल गया, शास्त्रों का संग मिल गया। मैं तो बड़ा भारी कठिन है, कोटि कोटि लोगों में से ही इधर जाना बड़ा भारी कठिन है भाइयों। सत्संग के प्रभाव से संसार बंधन छेदन की बात में क्या कहूं, कैसे अपने आप हो जाता है। हाथ में तलवार आई और अपने आप को कट गया। ये तलवार क्या है? साधु संग में जो वचन होते हैं उनके, हरि कथा, यही पैनी तलवार है। संत ए वास छिंदंती मनोव्यासंग उक्ति भी, उक्ति भी अपनी कठिन तलवार रूपी उक्ति से भाव बंधन को काट देते हैं। क्यों? अभी ये तलवार चल रही है, धरा खपाखप चल रही है तलवार, अभी इस समय तलवार ही चल रही है। यदि इसके वार को ठीक से समझ लिया जाए, जरूर साधु संग होकर के चित्त शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। आज जो नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं अनुसरण करेंगे, उनका नहीं होगा। उस समय में जब सत्संग होता है, तब परावरे से कई जायते रति, परावरे से, परावरे से मैंने पर और अवर, इसे आप कौन है जो अस्तित्व पहले का वही आप पर, पर माने क्या, पर माने मुक्त महापुरुष लोग हैं अथवा जो भगवत अवतार हैं पर, इनके भी श्रेष्ठ आप हैं। और अवर जो बद्ध जीव या जीव लोग हैं या इंद्र इत्यादि देवता हैं या दूसरे लोग हैं, इनके भी इस स्वरूप कौन है, ये कृष्ण है अथवा कार्य और कारण। कार्य माने पर, नहीं कारण है पर और कार्य है अवर, दोनों को नियंत्रण करने वाले जो पर ब्रह्म स्वरूप जो कृष्ण है अथवा अवर कहने से अर्वाचीन जीव ब्रह्मादि ईश्वर और देवता लोग, उन लोगों की बुद्धि कैसी होती है, गौरव रूप में भगवान में लगती है, तुमने लगती है गौरव रूप में, कौन किनकी, साधारण जीवों की आपके संग होने से भगवान के तरफ में गौरवपूर्ण बुद्धि लगेगी, पूज्य बुद्धि दास के भाव से। और जो तुम्हारे शुद्ध भक्त हैं प्रियतम रूप में नहीं होगा, तथा ब्रज का भाव नहीं होगा। और दूसरे जो हैं भक्तों के हृदय में एकमात्र आपके चरणों में रति होती है, शुद्ध भक्तों के हृदय रति माने भाव उनके चरण में उत्पन्न होता है, प्रेम अनुभूत होता है। एकादश स्कंद में पुनः कहते हैं, एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी को बतला रहे जो उद्धव संदेश के नाम से, उद्धव संवाद के नाम से प्रश्न, कृष्ण गोलोक वृंदावन में जाने की तैयारी में है, अपनी लीला को अप्रकट करना चाहते हैं, उसमें उद्धव को लक्ष्य करके, किंतु संसारी जीवों के लिए जो कह रहे हैं ये उपदेश, उसको वर्णन कर रहे हैं भगवान स्वयं। क्या कह रहे हैं, जोखोपशम मानस्य भगवंतम विभावसुम अन्नम ही प्राणी नाम प्राण आतानम शरणम त्वहम धर्मो वित्तम निर्णन प्रत्य संतो अर्वाक विभक्त रणम संतो दिशंति चक्षुंसी बहिर्क समुत्थित देवता बांधवा संत एव संत आत्मा अहम एव च कर रहे हैं। इसका अर्थ जैसे भगवान विभाव अग्नि, अग्नि के समीप जाने से ही अग्नि जल रही है और उस समय उनके निकट जाने से सेवा करने, सेवा माने ऐसे हाथ कर दिया उनके निकट जा करके, तो जैसे शीत ठंडक दूर हो जाती है, अंधकार दूर हो जाता है, आग जलने पर अंधकार रहता है वो दूर हो जाए, और सर्प इत्यादि का अभाव भय इत्यादि दूर हो जाता है। जंगल में यदि जाना है तो एक लकड़ी में कपड़े बांधकर उसमें किरासन का तेल लगा दो और उसमें जसलाई लगा दो और उसको लेकर के लैंप दे दी जाओ, बाघ भालू सिंह हाथी कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, सर्प इत्यादि भाग जाए। भालू को देख करके इतना जोर से भागेगा जो हम मरा क्योंकि उसके केस है ना झट वो लग जाएगा, इसलिए भाग, और किसी तरह से नहीं भागते। तो जितने शीत ठंड ये शरीर के अंदर में ठंड है ये भी दूर हो जाएगा शरीर के अंदर, और अंधकार ये बाहर का सर्प इत्यादि का भय ये सब दूर हो जाता है। उसी प्रकार से साधुओं की सेवा करने से क्या होगा, उससे भी अधिक होगा लाभ, क्या होगा, सारी क्लेश दूर हो जाएंगे, जितनी अज्ञानता रूपी तमह अंधकार है ये सब भी दूर हो जाएगा, और साथ साथ में भगवान की सेवा प्राप्ति रूप अमृत का पान भी मिल जाएगा, ये तीनों चीजें अपने आप हो जाएंगी। यहां पर तम से किसको समझना चाहिए, कर्मों में अभिज्ञता, मैं बहुत कर्मी हूं, कर्म कुशल हूं, कर्मादि जात्य, और उससे भगवान की सेवा में जड़ता आ गई। संसारी कामों में तो खूब तेज है
रसोई बनाने में खूब दक्ष हैं, बात बनाने में खूब पटु हैं, बात बनाने में सहेलियां यदि मिल जाती हैं तो 50 जीवा निकल आती है, और हरिनाम करने में सिर पर मानो वज्र पड़ जाता है, और भगवत चिंतन मंत्र करने में क्या तकिया और बारिश की भी वक्त हो जाती है सोने की, उसमें रुचि ही नहीं। यही कारण है, ये तम से इसको समझो। तम माने हम लोगों के लिए समझो, भगवत भजन में रुचि नहीं होना यही तम है, भगवान का तत्व ज्ञान है ये नहीं होना, ये अंधकार है। वैष्णव गुरु का नहीं होना ये भी तम है। आगामी संसार का भय, अभी तो हम संसार में आ गए हैं, गारंटी से संसारी लोग कहेंगे जब हम आएंगे कि नहीं आएंगे, कहां जाएंगे, क्या होगा, हम लोग कुछ कुछ कह सकते हैं, उसके कर्मों को देख करके कह देंगे कहां जा सकता है, कैसा इसका जन्म होगा, हम लोग कुछ अनुमान कर लेंगे। संसारी लोग अनुमान नहीं कर सकते इस चीजों का। तो आगे संसार का जो भय है, यदि भजन नहीं करेंगे तो संसार का भय आएगा ही, ये भी दूर हो जाता है, और अभी जो कर्म की दक्षता इत्यादि ये भी दूर हो जाएगी, और संसार का जो मूल कारण है भगवत तत्व में अज्ञान ये भी दूर हो जाएगा। भगवत भक्ति की महिमा के विषय में ये जो अज्ञान है ये भी दूर हो जाएगा। मूल श्लोक में जो उप है उपस्थ्रयमानस्य उप आश्रय, आश्रय लेते हैं का उप से, यदि दूर से भी लेते हैं वहां पर उप शब्द का प्रयोग, निकट से नहीं, समीप भी होता है दूर भी होता है, यहां पर उप शब्द का अच्छे दूर भी रहो, यदि दूर भी है कोई बात व्यक्ति तो भी सेवा के द्वारा उसका साधु संग किया जा सकता है। हम अमेरिका में हैं, साधु इंडिया में है, तो उनका सेवा कैसे होगा, इफ वी आर इन इंडिया साधु एनी एंड एनी डिवोटी इज इन इंग्लैंड आर अमेरिका आर इन रशिया, हाउ कैन ही सर्व, हाउ कैन ही ऑब्टेन द एसोसिएशन ऑफ वैष्णव गुरु, नो ही कैन बी एसोसिएटेड, ही विल हैव द सेम थ्रोथ इफ वी आर the move that I will serve and send something from his energy to sadhu seva. By his letter, he asked some questions. Who am I? What should I do? How can I serve you? How can I serve Krishna? Sadhu will write from here that in this way you can serve your Gurudev, Vaishnava and Krishna. He sent something as a donation, not as a donation, but as a for service, then it is sadhu sang. और यहां रह करके भी यदि नहीं करते ये सब तो ये सेवा, इसलिए दूर से भी साधु संघ हो सकता है, समवर्ती होकर के सेवा करने से जो क्या फल होगा इसकी तो बात ही क्या है, यदि दूर से भी हो सकती है, इफ यू कैन सर्व कृष्ण गुरुदेव एंड वैष्णव फ्रॉम वेरी डिस्टेंस प्लेस, तो व्हाट टू से अबाउट ए डिवोटी हु इज ऑलवेज लिविंग नियर टू गुरुदेव एंड सर्विंग ऑलवेज, इसलिए उसका फल क्या होगा ये बला नहीं जा सकता, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं। किंतु कुछ लोग ये समझते हैं कि गुरु के वैष्णव के निकट रहने से कोई अपराध हो जाता है इसलिए हम दूर रहेंगे, ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग संपूर्ण रूप से मूर्ख हैं। इसका कारण यह है कि संसार में उच्च और नीच दुनिया है, उसमें हम अभी भ्रमण कर रहे हैं, वे अथवा संसार के सागर में जो निमग्न हो गए हैं, अभी संसार में बहुत तरह के अधिकारी लोग हैं, कुछ लोग तो संसार में डूब रहे हैं, कैसे डूब रहे हैं, जैसे मदिरा खा करके मद्यपान करके कोई व्यक्ति चेतनता नष्ट कर देता है और सोया हुआ है, उसको कुछ करो भी मारो भी थप्पड़ दो अपमान करो गाली दो उसको कुछ नहीं आता समझ में ये क्या कर रहा है,
एकदम अज्ञानता चेतनता शून्य है वो। और जो संसार में डूब करके कभी ऊपर आते हैं नीचे आते हैं फिर ऊपर आते हैं जाते हैं, ये कौन? संसार में जन्म लेते हैं और फिर मनुष्य जन्म लेते हैं और दर दर फिर मनुष्य जन्म लिया, ये डूबते हैं ऊपर आते हैं। इस प्रकार से जो जल में निमग्न हो रहे पुनः पुनः संसार सागर में निमग्न हो रहे हैं उनके लिए हरिनाम वैष्णव का संग नौका के समान है। कैसा संग? अभी बतलाया था निष्किंचनानं निष्किंचन वैष्णव हो तो उनका संग कैसा है? नौका के समान में है। कैसी नौका? नौका के पास में चले जाओ औकाज में आपकी नौका में बैठूंगा, नौका का स्पर्श किया देखा जो वो पार हो गई नौका वहीं पर रह गई, ऐसा वो है ना कि आप प्लवम पल्लवम ये भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है जो याद कर सकते हैं इसको कर लेना। ऐसी भगवान की नौका है जिसको हम आश्रय करके नौका यही रहेगी और हम देखा जो उस पार में चले गए कब पार हो गए ये पता नहीं चलेगा, जो साधुओं का संग करने वाले हैं ऐसा ही है कब पार हो गए कितने कोटि कोटि जन्मों तक। ऐ भाई सो मत, ये नौका ऐसी है महत् पदम पदम विपदाम नतेशम, उनको विपत्ति कभी नहीं होगी संसाधव सागर को वो पार कर जाएंगे। महत्पदों का महत्पद माने साधुओं के चरण कमलों का जिन्होंने आश्रय किया ये नौका है। देखेंगे क्या दत्त पदम ये भव सागर कैसा हो जाएगा, बछड़े का खुर में जितना पानी होता है, चल रहे हैं बछड़े का खुर में पानी है कब पार करके देखा नहीं, ऐसे ये भव सिंधु को पार कर जाए देखा कहा गोलोक में कृष्ण की हम सेवा कर रहे हैं, कोटि कोटि का जन्मों का किया हुआ कर्म फल भी दूर हो जाएगा। कितनी हत्या गोहत्या क्या किया होगा, मातृहत्या भी की होगी, कितने तरह के पाप किए होंगे भगवान का नाम वैष्णव का संग करने से, ये सभी जैसे अजामिल का और इसका वाल्मीकि का लाखों कोटि लोगों का ये सब देखा जाता है। कितना एक घंटा हो गया इसलिए यहां पर एक शब्द आया ब्रह्मविद, ब्रह्मविद संतों का अकिंचन ब्रह्मविद, ब्रह्मविद क्या 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 होगा अर्थ समस्त वेदों का तात्पर्य जो भक्ति है इसको जानने वाले, वेद उपनिषद शास्त्रों का तात्पर्य क्या है एकमात्र भगवत भक्ति, भगवत भक्ति का तात्पर्य क्या उसका सार क्या है भाव भक्ति, भाव भक्ति का सार क्या है प्रेम, प्रेम का सार क्या महाभाव, महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका ठाकुरानी, ऐसे सार को समझने वाले को ब्रह्मविद कहते हैं। इसलिए यहां पर एक शांत शब्द आया है, वो साधु लोग कैसे होते हैं शांत, तत् मोक्ष के विषय में भी जो शांत रहते हैं उनसे इच्छा रही, शांत अर्थ है शांति से रहना, यहां पर वो अर्थ नहीं, मोक्ष को शांति कहते हैं, यहां पर मोक्ष को भी तिरस्कार करने वाले हैं वो यहां पर शांत है, अर्थ मोक्ष विषय में भी जो शांत है, ये नया सनातन गोस्वामी जी दे रहे हैं। और आत्मों के शरण है, अन्न जिस प्रकार से प्राणियों का प्राण है, अन्न प्राणियों का प्राण है, वैसे ही ये सत्संग भी हम लोगों का संतों का प्राण है जो साधुओं की सेवा करके भगवान को पाना चाहते हैं। धर्म जैसे मनुष्यों के लिए धन है वैसे हमारा धन क्या संपत्ति क्या है वो एक है ना अद्वैत मोर धन नित्यानंद धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र प्राण मोर जुगल किशोर
ये धन, ये धन कौन हुआ? नित्यानंद। और नित्यानंद के जो परिकर भक्तगण हैं वो सभी धन हमारी संपत्ति हैं। यदि धन मिल रहा हो उपेक्षा करोगे तो धन चला जाएगा। बस ऐसे ही प्राणियों के लिए ये धन संपत्ति है। क्या? वैष्णवों का संग। इसलिए धन जैसे साधु पुरुषों के संसार में पतनशील मनुष्यों को परित्राण करता है दुखों से, ऐसे साधु संघ हमारी सब समय रक्षा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साधु संघ से बढ़कर के हमारे लिए कोई संपत्ति नहीं। इसलिए साधु संघ से भगवान भी मिलेंगे, हमारा ताप भी दूर हो जाएगा, कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा, इससे बढ़कर को और क्या हो सकता है। ऐसे साधु संघ के प्रति अवहेला न हो, और जहां ये सुलभ है हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा ऐसा समझो। इसलिए अहंकार, क्रोध, द्वेष, लोभ, अहंकार सब दोनों दुर्गुणों को छोड़ करके अत्यंत नम्र हो करके इसका सेवन करो यदि मिलता है, इससे हमारा जन्म कोटि सुधर जाएगा। आज यही तक रहे। वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ये क्या चीज है? अभी आ रहा है आगे क्या? वो
रसायन
की धारा लाना है। कैसे आएगा? खोदना होगा, तो जमीन को खोदने से तो उसकी धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर आएगी, तो इसलिए खोद रहे हैं सनातन गोस्वामी उस धारा को लाने के लिए। इसलिए इन सब चीजों को, दुर्गुणों को दूर करते हुए वो धारा को आस्वादन करने के लिए चेष्टा हम लोग करें। सनातन गोस्वामी जी बृहद भगवतामृत में बतला रहे, इस सबको याद रखना चाहिए और उसमें उपस्थित होना चाहिए। कौन सा कल श्लोक दिया था बोलो? कौन सा श्लोक दिया था? इसमें सनातन गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से विशेष करके भागवत से सत्संग का महात्म्य बतला रहे हैं। स्वयं कृष्ण उद्धव जी को बतला रहे हैं, सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि, अत्यंत गोपनीय होने पर भी तुमको बतला रहा हूं। संग में भृत्य है, क्यों? तुम हमारा सेवक है। सुहृद है, हमारा सुहृद है और सखा है। सुहृद किसको कहते हैं? जो हृदय से ही हमारी भलाई की कामना करता है उसको कहते हैं सुहृद। हमारे प्रति अच्छे भाव रखने वाला और सखा, सख्त भाव से जो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम हमारा सखा, मित्र और भृत्य है। इसलिए सुगोप्य चीज, मैं रहस्यपूर्ण चीज आप तुमको बतला रहा हूं। यदि कोई साधु वृत्ति का श्रद्धालु व्यक्ति हो तो उसे कहना, नहीं तो मत कहना। जिनके कुछ अच्छे नहीं हो, जो साधु गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करता है उसको मत बतलाना, और जो साधु गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं प्रीति है तो उनको कहना, नहीं तो ये लाखों रुपयों का एक नोट है, करेंसी नोट, उसको तोड़वा करके अपने भोग में लगाएगा। साथ है नरोधे अति मांग जोगो न संख्यम धर्म ये वच न श्रद्धा न तपस्त्यागो न इष्ट पूर्तम न दक्षिणा व्रतानी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा क्षण जना यथा वरुंधे सत्संग सदसंगाप हो हिमा। इसके व्याख्या में बतला रहे हैं, हे सखे, सब प्रकार के वैषयिक प्राकृत संगों को दूर करने वाला जो सत्संग है वो मुझको इतना अधिक वशीभूत करता है,
सबसे अधिक सत्संग जो योग सांख्य धर्म स्वाध्याय सब त्याग इष्टापूर्ति दक्षिणा व्रत यज्ञ छंद तीर्थ पर्यटन नियम और जम सकल हमको उतना वशीभूत नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको यह रहस्य बतलाता हूं, हमारे प्रिय जो भक्त हैं उन लोगों का संग सत्संग महत्पुरुषों का संग हमको जैसे वशीभूत कर लेता है ऐसे ये सब नहीं करते। जिस प्रकार से प्रिय पत्नी अपने पति को वशीभूत कर लेती है, जिस प्रकार से द्रौपदी अपने पांचों पांडवों को वशीभूत कर लेती हैं, ठीक उसी तरह से ये सत्संग हमको वशीभूत कर लेता है। और यज्ञ यज्ञ तप तपस्या जितने हैं त्याग इष्टापूर्ति दक्षिणा वेद अध्ययन तीर्थ पर्यटन नियम जन ये सब नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ ये लोग भी कुछ करते हैं किंतु ऐसा नहीं करते जितना सत्संग करता है। किंतु और जगह लिखा है ये लोग भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते, वशीभूत करना तो दूर रहा। तो यहां जो कहा गया इसका अर्थ कुछ अलग अलग हो। जैसे योग शब्द, योग माने क्या? आत्मा और परमात्मा का जो योग है, आत्मा और ब्रह्म का जो योग है, जिससे कि आसन जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये अष्टांग योग है। इस योग से भगवान वशीभूत नहीं होंगे, प्रसन्न भी नहीं, ये बाहरी चीज है। किंतु जब भक्ति योग इसका अर्थ होगा तब कुछ कुछ प्रसन्न हो। गीता का जो योग बतलाया गया वो भक्ति योग है, तो भक्ति के योग से प्रसन्न हो। किंतु महाप्रभु जी कहते हैं यह बात जो ये अभी बाहरी है उसे मजबूत नहीं हूं, उसमें ऐसा विज्ञान। सांख्य माने तत्वों का विवेचन, जीव तत्व ईश्वर तत्व माया तत्व भक्ति तत्व कृष्ण तत्व बलराम तत्व गोपी तत्व भाव तत्व ये सब जो हैं यहां पर कहा गया इसके द्वारा भी हो। किंतु जहां पर सांख्य का तात्पर्य परमाणु से यह जगत रचित हुआ है यह कपिल देव का कपिल माने निरीश्वर कपिल अग्नि वंशज उनका सांख्य योग भगवान का भक्ति का विरोधी है उसे इसलिए यहां सांख्य कहने से जो तत्व ज्ञान है उसको यहां पर कहते हैं। इससे होंगे तत्व ज्ञान से किंतु इसके लिए भी कहा ज्ञाने प्रयास उत्पाश्चर्य न मनते ज्ञान का प्रयास छोड़ो तत्व ज्ञान से भी भक्ति नहीं होगी। शायद पहले स्थिति में होगा किंतु इसे प्रेम नहीं होगा इसलिए इसको भी छोड़ने की जरूरत है। इससे आगे चलो भगवान के लीला कथाओं का श्रवण करते करते अपने आप जो तत्व ज्ञान होगा वो भक्ति में सहायक होगा अन्यथा भक्ति में सहायक नहीं होगा। जीव क्या है? भगवान का अंश। कृष्ण कौन है? समस्त ईश्वरों के ईश्वर स्वयं आदि सबके आदि स्वयं अनादि सर्वशक्तिमान है ये कृष्ण तत्व। इससे क्या होगा? असज्जमयी भक्ति हो प्रेम भक्ति नहीं होगी उनके प्रति प्रेम नहीं होगा। प्रेम भक्ति के लिए बाधक है इसलिए इस तत्व ज्ञान को भी छोड़ करके नित्य उनकी कथाओं को श्रवण कर। इसलिए यहां पर साधारण रूप में जो सांख्य अग्नि वंशज कपिल और भक्त कपिल भगवान कपिल दो अंतर है। भागवत में जिस कपिल की बात लिखी गई है वो भागवत है भागवत तत्व माने भगवत तत्व है भगवान है सत्तावेश अवतार है। और अग्निवंश में जो स्थित जो पैदा हुए हैं वो निरीश्वर सांख्य को उन्होंने लिखा है। भगवान की जरूरत नहीं है, अपने आप मन बुद्धि अहंकार चित्त और प्रकृति मिलकर के जगत की सृष्टि हो गई। चित्त जगत की सृष्टि कैसे हुई? वो भी संख्या से हुई। जीव की सृष्टि होती है? नहीं। भगवान की सृष्टि होती है? नहीं। ये प्रकृति जो करती है वो भी बिना पुरुष के सहायता से नहीं करेगी, और उसमें भी अजागल स्तन, अजागल माने बकरी के, कुछ ऐसे बकरियां होती हैं जिनको यहां पर उनके स्तन जैसे लगा रहता है, तो उसमें दूध नहीं आएगा। इसलिए प्रकृति वैसे ही दिखलाने के लिए है। असल में क्रिया कौन करता है? प्रभु भगवान, और भगवान की चित्त शक्ति इत्यादि, यह साधारण प्रकृति से नहीं। इसलिए भगवत अवतार जो कपिल हैं वो सांख्य कुछ अधिक ठीक है, किंतु उसके द्वारा भी नहीं, क्रमशः भगवत भक्ति के द्वारा ये ठीक होगा। धर्म माने साधारण तरह से अहिंसा धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा माने क्या? अहिंसा परमो धर्म इसको कहते हैं, किसी को नहीं मारना, तन मन वचन से किसी को मारो मत, अहिंसा है। किंतु भागवत के अनुसार में यह अहिंसा नहीं है। अहिंसा क्या है? अहिंसा है शुद्ध भक्ति, यदि भक्तों में दिया जाए लोगों में, ये अहिंसा है। कोटि कोटि जन्मों के लिए अहिंसा से वो बच जाते, यदि किसी के अंदर में भक्ति कर दिया जाए, संचयित कर दिया जाए, उसका कोटि कोटि जन्म सफल हो जाता है। इसलिए ऐसे अहिंसा की जरूरत। जो लोग माता पिता भाई बंधु अपने बच्चे को भगवान का भजन नहीं करने देते और सांसारिक सुखों में लगाना चाहते हैं, वो बड़े हिंसुक हैं, बड़े हिंसुक हैं। हिरण्यकश्यपु, संडामर्क इत्यादि बड़े हिंसा परायण हैं, कोटि कोटि लोगों को भगवान के भक्ति से वंचित करते हैं, इसलिए ये हिंसा है। तो जो लोग अपने बच्चों को और खुद भी भजन नहीं करते और नहीं करने देते, वो लोग सब हिंसुक हैं। धर्म में वचन अहिंसा और वर्णाश्रमाचार, वर्णाश्रमाचार मैंने वर्णाश्रम धर्म के मध्य से भगवान की उपासना करना, ये वर्णाश्रम धर्म। घर में ठाकुर जी रहे, राधा कृष्ण रहे, सालग्राम रहे, नारायण रहे, राम रहे, उनकी सेवा करते हुए उन्हीं का सेवक बन करके सेवा करें, यह वर्णाश्रम धर्म है। किंतु इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी है शरीर में आत्माभिमान का, मैं ये शरीर, और जब तक यह रहता तब तक उपासना शुद्ध नहीं होती, लोगों के समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं ये सब जानने की जरूरत क्या है, ये भगवत तत्व इत्यादि और भक्ति, हम भगवान के चरणों में भक्ति अमर अर्पित करें, भगवान का भक्ति करेंगे, असंभव नहीं होगा। जब तक इस तत्व से नहीं इन चीजों को समझेंगे, जो भक्ति क्या है, कृष्ण क्या है, और सब विचार नहीं समझेंगे, तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। एकांतिक भक्ति किसको कहते हैं, ये भी समझना चाहिए। भक्ति है किसका चेतना, किस चीज को भक्ति कहते हैं? चित्त की वृत्ति जब अनायास ही स्वयं भगवान के चरणों में तेज धारावत विच्छिन्न गति से लगने लगे, तब तो भक्ति है। भगवान के लिए ही सब कुछ करने लगे, तन मन वचन क्रिया से जो कुछ होगा वो भगवान के लिए करने लगे। उससे भगवान से कुछ नहीं चाहेगा कि हमको प्रभु अर्थ दो, हम आपकी इतनी भक्ति कर रहे हैं, संसारी कोई चीज की लालसा नहीं, परमार्थिक भी नहीं, मुक्ति भी नहीं। स्वाध्याय मैंने वेद, वेद अध्ययन, वेदों के अनुगत पुराण इत्यादि अध्ययन, सब अध्ययन कहते हैं वेदाध्ययन, भाई इससे भी नहीं होगा। तपा, तप माने क्लेश, शरीर को क्लेश देना, तपस्या, त्याग, त्याग माने सब छोड़ करके सन्यासी हो जाना, इष्टापूर्त, कुएं, तालाब, पुष्करणी इत्यादि बनाना, घाट बनाना, लाइट देना, जानदार है, लोक हित करता है, दक्षिणा, दान,
इसे लक्षित होता है, किंतु इसे भगवान तो बहुत प्रसन्न ही नहीं होते। दान माने क्या है? यदि किसी की अपनी चीज है तो उसका दान कर सकता है। संसार में अपनी क्या चीज है? शरीर ही जब नहीं तुम्हारा तो तू क्या दान करेगा? सेवा करने की प्रवृत्ति होगी, इसके द्वारा भगवान का सब कुछ है, ये जीव भगवान के हैं, उनकी सेवा में करें तब तो कुछ कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। व्रत एकादशी उपवास, मायावादी अद्वैतवादी कर्मी योगी ज्ञानी सब जितने देवता के उपासना के सभी लोग एकादशी करते हैं, यह हिंदू की मैं एक प्रचलित हूं, किंतु सब एकादशी एक नहीं। जो सांसारिक कर्मों के लिए दुखों को दूर करने के लिए एकादशी की जाती है, अशुद्ध रूप से भगवान की सेवा प्राप्ति करने के लिए जो की जाती है, एकादशी दोनों एक नहीं, बहुत अंतर है। यज्ञ देवताओं की पूजा साधारण रूप में, अविशेष रूप में क्या यज्ञ अर्थात कर्मणों को अन्यत्रम कम वंदना तदर्थम कम कंतेय मुक्त संग समाज, संसारिक समस्त आसक्तियों को दूर करके मद अर्थ माने कृष्ण के प्रीति के लिए करो, ये यज्ञ होगा। और जब ऐसा नहीं करते हैं तो जितने भी कर्म है वो बंधन है, लाखों लाखों जन्मों में संसार में लाएंगे, मरोगे और फिर जाए, इस तरह से कर्म बंधन के चक्र में पड़े रहेंगे। और यदि यज्ञ होगा किसके लिए? विष्णु के लिए होगा, तब तो संसार से मुक्त कर देगा, अनासक्त होकर करे। और संकीर्तन यज्ञ हो तब तो अशुद्ध रूप में वैष्णव के अनुगत्य में वो सबसे श्रेष्ठ है। तीर्थ गंगा इत्यादि तीर्थ, वृंदावन इत्यादि धाम, ये सब केवल गंगा स्नान तो सभी करते हैं, किंतु एकांतिक रूप में वृंदावन के ऊपर ब्रज के ऊपर प्रति स्नेह हो तब तो उसका कल्याण हो जाए। बहुत से लोग वृंदावन में मथुरा में राधा कुंड के जहां जहां ये सब कृष्ण की लीलाएं हुई वहां रहते हैं, किंतु सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं गया को, और वहां पर पिंड जाने देने के लिए जाते, तो उसका क्या हुआ? विपरीत फल हो गया। अरे वृंदावन से कोई श्रेष्ठ है नहीं, उनका पांच धाम स्वरूप कृष्ण स्वरूप उसको छोड़ करके गया में पिंड देने के लिए जाते हैं, तो भगवान के प्रति उनकी आस्था क्या रही? इसलिए बहुत दुर्भागा लोग हैं। गंगा के स्नान करने से पीछे पवित्र होते हैं, आप भक्तों के संग में साथ ही साथ में पवित्र हो जाते हैं, इसमें सबसे बड़ा तीर्थ है साधु सब। किंतु साधु की कौन है ये पीछे बतलाएंगे। यम नियम, नियम माने शौच इत्यादि द्वादश प्रकार के नियम है। सवेरे उठ करके स्नान से सब उठ करके भगवान की प्रार्थना करते हुए नित्य नैमित्तिक कार्य करना, किया नहीं, दांत नहीं धोया, पैखाना टट्टी नहीं गया, पवित्र नहीं हुआ, स्नान नहीं किया और सब कामों में लग गए, यह नियम नहीं हुआ। हम लोगों को भी ऐसे करना चाहिए, सब प्रकार से पवित्र होकर के भगवान ठाकुर जी का अर्चन करें, अर्थ उनका आरती इत्यादि दर्शन करें और नियम पूर्वक अपना सब काम करें। यम यम अहिंसा इत्यादि द्वादश प्रकार के हैं। भगवान ने और भी कहा है अहिंसा, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा न हो, सत्य, सत्य भगवान है उनकी भक्ति और भगवान का नाम है सत्य, जान करके झूठ बोल मत। यद्यपि ये जो सत्य है ये यथार्थ सत्य नहीं है, बात ठीक है, जैसे मैंने पूछा ये क्या नाम है, आपने अपना नाम बताया, ये सत्य नहीं है। कहिए कहां घर है, तो मथुरा में, ये भी असत्य है। जो कुछ भी जगत में कहेंगे वो सब असत्य है। सत्य क्या है? जब आत्मा की अनुभूति होगी और आत्मा का जो विषय होगा वो सत्य होगा, उसका विषय है भगवान,
तब तो सत्य होगा, नहीं तो अभी झूठ बोलने के लिए बाध्य है। किंतु तो भी व्यवहार में झूठ मत बोलो। अरे भाई तुम आरती में नहीं आया, क्यों नहीं आया? मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अरे ये सीधा नहीं कहा कि आलस्य लग रहा था, मैं नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब, तो सचमुच में तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा ही समझो। इसलिए झूठ मत कभी बोलो, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ मत बोलो, नहीं तो किसी का विश्वास नहीं रहेगा। देखो सत्य एक ऐसी चीज है, दुर्योधन जैसा व्यक्ति युधिष्ठिर में विश्वास था और कंस ने भी विश्वास कर लिया, वसुदेव महाराज को लड़के लौटा दिया, ये चीज है सत्य। यदि सत्य कुछ दिन बोलोगे एक वर्ष तो तुम्हारे मुख से जो कुछ निकालेगा वो सत्य हो जाएगा। परीक्षा करके देख लो, हमने तो परीक्षा किया, यदि कहेगा ना कुछ भी कह दिया वो जरूर सत्य हो जाएगा। और फिर एक वर्ष के बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर झूठ नहीं बोल सकते, ये भी साक्षात। चौरी चोरी ना करो, चोरी माने बिना किसी से पूछे उसकी वस्तु को ले लेना चोरी है, ये चोरी मत करो कभी। चाहे लाख सोना पड़ा रहे, हीरा जवाहरात पड़ा रहे, मत छुओ यदि भक्ति चाहते। असंग दुजन लोगों का संग मत करो, विषय लोगों का संग मत करो, साधु पुरुषों का संग। बहुत से लोग साधु पुरुषों का संग करने के लिए डरते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे बहुत से लोग हमारे निकट ही नहीं आते, बहुत डूबते हैं, जम जैसा हमको भय करते हैं। और जो एकांतिक हैं सेवक वो हमको डर नहीं करते, एकदम हमारे पास में चले जाते हैं। इसलिए साधु पुरुषों से डरने की जरूरत नहीं है, और संग से कुसंग से डरने की जरूरत है। बहुत से लोग दिन भर अपनी बात कहते हैं, मैं अस्वस्थ हो गया, मुझे ये रोग हो गया, मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं होता, हमारे साथ उसने कैसा व्यवहार किया, हमने उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया, उसने बुरा किया, दिन रात पचाल पाते हैं, किंतु भक्ति की बात नहीं करेंगे। उनका स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। दुसंग है, जिसको शरीर में आसक्ति है, विषयों में ममता है, उसका संग नहीं करते। असंचय, भगवत भक्ति के अतिरिक्त कुछ संचय मत करो, जो समर्थवान है वो करें, किंतु वो भी नहीं, उनको भी नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जी संचय करते हैं, इसलिए हम लोग भी करेंगे, मरोगे, ऐसा नहीं। महाप्रभु जी का आदर्श हम लोगों को रखना चाहिए, स्वधर्म में स्थिर विश्वास, हम जो कर रहे हैं इसमें एकदम विश्वास पक्का, इसे हमारा जरूर कल्याण। कृष्ण भक्ति में गोपियों जैसी भक्ति को मैं स्थिर विश्वास कर, कभी उसे तलमल नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, सब समय ब्रह्म का चिंतन, कृष्ण का, यहां पर ब्रह्म माने कृष्ण चिंतन और उनके परिकरों का, और चरित्र से भी ब्रह्मचर्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मौन, मौन माने क्या, भगवत कथा के अतिरिक्त, तत्व कथा के अतिरिक्त, कृष्ण की कथा के अतिरिक्त, हरिनाम करने के अतिरिक्त, भगवत कथा चर्चा के अतिरिक्त, और सब समय मौन रहे, युवा पर अंकुश लगा, इधर उधर की चुकनी चुपड़ी बातें न करें, स्थैर्य स्थिर हो, चंचल चित्त नहीं होना चाहिए। क्षमा, लोग कोई दोष करते हैं, त्रुटि करते हैं, तभी उनको क्षमा करनी चाहिए, जानते नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए क्षमा उनके प्रति होनी चाहिए। भय, कोई अपराध करने में भय हो, किसी की अवज्ञा करने में भय हो, और बाह्य शौच अभ्यंतर शौच, भीतरी और बाहरी शौच। भीतरी शौच भगवान नाम से होगा, जस मरित कुंडरी काक्षम सर बाह्यभांतर, बाह्यभांतर बस सब सब सोच, जो कृष्ण का करेगा तो और भी अधिक। कुंडरी कौन है,
पुंडरीक में राम भी आएंगे, निसिंह भी आएंगे, समस्त विष्णु तत्व है, सभी का है, चाहे शुक्र रूप में भी आएंगे कमल लेंगे, किसी भी रूप में आएंगे उनका कमल लेंगे, किंतु कृष्ण का आने से नंदनंदन का बोध, इसलिए विशेष रूप में उनका होना चाहिए। उसे अंतर और बाद में जो कृष्ण का मंत्र जपते हैं, गोपाल मंत्र जपते हैं, काम गायत्री जप करते हैं, इन लोगों का बाहरी और भीतरी शौच हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं, किंतु देखते हैं कि यह मंत्र जपने पर भी किसी का नहीं होता, तो इसका मतलब ये करते नहीं जैसा करना चाहिए, एकाग्र चित्त से ऐसा नहीं करते, एकाग्र चित्त से हो प्रार्थना मूलक जो उस मंत्र में है स्वाहा तो स्वाहा कर दो, अपने को अर्पण कर दो, मंत्र का जो भाव है वो आना चाहिए, उदयात हमारे हृदय में उदित हो, प्रार्थना मूलक हो, तब देखो जैसे चित्त स्थिर हो जाएगा। ठीक रूप में जप क्या हरिनाम कीर्तन इत्यादि, तपस्या होम धर्म में आदर, आतिथ्य हमारी पूजा, तीर्थ भ्रमण दूसरों के उपकार के लिए चेष्टा, सब समय जो कुछ भगवान ने दिया उसे संतोष रखो और अधिक की मत इच्छा करो, यह भी एक बहुत बड़ा भारी गुण है, जो भगवान ने हमें दिया है उसी से संतुष्ट रखो और अधिक हाय हाय करेगा तो भक्ति नहीं रहेगी। आचार्य की सेवा, अपने गुरु की सेवा, यहां पर अस्तेय शब्द का मन के द्वारा भी किसी की वस्तु मत लो, शरीर के द्वारा तो बात क्या है, क्या यार समझ, किसी की चीज यहां पर कोई चीज गिर गई, एक घड़ी गिर गई तो जी बहुत अच्छा हो गया, बस किसी को नहीं बतलाया, ऐसा नहीं मन के द्वारा भी दे करके कोई वस्तु ये हमको अच्छी ले लेता तो बहुत अच्छा, मन के द्वारा भी मत करो, सर्वसंग आप हो, गुणमय और गुणातीत सभी विषयों का संग, मन का अभिनिवेश इसको भी दूर करो, अपहरण कर लेता है कौन, सत्संग, वैकुंठ की इच्छा यदि हमारी इच्छा है और ब्रज के रसिक भक्तों का संग होगा तो क्या करेंगे वो, वैकुंठ की इच्छा भी दूर कर देंगे, कृष्ण कहते मेरी भी इच्छा को दूर कर देते हैं, मैं वैकुंठ में हूं यदि तो भक्तों का संग यदि मिल जाता है, कैसे भक्तों का, रसिक भक्तों का संग मिल जाता है तो हमारी वैकुंठ में रहने की इच्छा, हमारी इच्छा को भी वैकुंठ के संगों की स्प्रिया को भी दूर कर देते हैं, ऐसा संगों का भगवान अपने लिए भी कहते हैं तो भक्तों के लिए बात क्या, जितने प्रकार के संग माने यहां पर आसक्ति, आसक्ति को ये दूर कर देता है कौन, साधुओं का संग, महापुरुषों का संग, इसमें करें अर्थात वैकुंठ विषय जो क्रीड़ा की आसक्ति मेरे अंदर में उसको भी दूर करा देते हैं, वृंदावन में लीला की आसक्ति को लगा देते हैं, अतएव महत् व्यक्तियों का संग के प्रभाव से कोई भी कृतार्थ हो सकता है, महत् व्यक्ति होना चाहिए। विदुर ने इसके संबंध में कहा है सुतस्य पुंसान सुचिर समस्य नन अंजसा सुरिभि इड़तई अर्थ इत्यादि। विदुर ने बतलाया है चीरकाल से जो शास्त्र श्रवणों का परिश्रम का जो फल है, बहुत दिनों तक शास्त्र का श्रवण किया, सबका अर्थ पंडितों ने निश्चय किया, शास्त्र श्रवण का फल क्या है, जिनके हृदय में भगवान मुकुंद
के चरण कमल विद्यमान रहते हैं, सब समय भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, ऐसे वैष्णव के संग की पिपासा को जगा देना, ऐसे भक्तों का संग दिला देना, ये समस्त शास्त्रों का ये तात्पर्य। साधु संग सर्वशास्त्र कर लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा यदि साधुओं का संग है, साधु कैसा महत्पुरुष, तो क्षण मात्र में वो कृतार्थ हो जाता है। किंतु साधु साधु संग होना चाहिए, लोभी और ये सब जो गुरु बतलाया, ऐसा नहीं भगवान का एकांतिक रसिक भक्त हो, तत्पज्ञ हो। अब वृंदावन चंद्र जो वृंदावन के हैं, इनके चरणों में एकांतिक अनुराग हो, विशेष करके कृष्ण के का जो हृदय है, कृष्ण को जो सबसे प्यारी हैं गोपियां, उनके चरणों में भक्ति सबसे बड़ी है। तो ऐसा कोई भक्त हो, उसके संग से उसके सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए पंडित उन्हीं को कहते हैं, इसलिए यथार्थ जो पंडित हैं ये साधु संघ की महिमा का वर्णन करते हैं, ये इससे बढ़कर के जगत में कुछ नहीं। यदि साधु संघ हो गया तो उसका श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन सभी हो जाएगा, और साधु संघ नहीं मिला ये कुछ भी नहीं होगा। इसलिए साधु संघ की महानता, जिसका जैसा साधु संघ होगा ऐसे ही उसकी बुद्धि भी होगी। अर्थात भगवत भक्तों का गुण महात्म और चरित्र का बारंबार श्रवण करना, यही शास्त्रों का तात्पर्य है। भगवान के चरित्र से भी अधिक साधुओं की महिमा का श्रवण करना संतों का यह और भी उपयोगी हम लोग। क्यों, कैसे वो लोगों ने भगवान को पाया ये सब साधु ही बतलाएंगे। भगवान के चरणों में कैसे मति होती है ये साधु बतलाएंगे, भगवान नहीं बतलाएंगे। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी ने भी कहा है, यान निवृत्ति स्तनुभृतम तो पाद पद्म ध्यानात भवत जनक कथा श्रमणी नवाश्चात सा ब्रह्मणी स्वमहिम नमी नाथ मा भूत किंबा अंतकाशित लिलितांग पतितांग विमानात। कहते प्रभो, ध्रुव जी कह रहे हैं भगवान के लिए, आपके चरण कमलों का जो ध्यान करने वाले उनका जैसा सुख है और आपकी लीला कथाओं को सुनने में जो सुख है, आपके भक्तों की का जो चरित्र है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला रूप गोस्वामी, बिल्ल मंगल ठाकुर इत्यादि, गोपियां इत्यादि ये लोग हैं, इनकी कथाओं सुनने से जो सुख लाभ होता है वो भगवान के आत्म साक्षात करने से भी नहीं होता, भगवान के दर्शन से भी नहीं होगा। और ब्रह्म साक्षात नाम की तो तुच्छ बात है, एक होता है ब्रह्म साक्षात्कार, एक होता है आत्म साक्षात्कार, एक होता है भगवत साक्षात्कार। इन तीनों चीजों को समझो। आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं, जब आत्मा का सच्चा आत्मा कैसा है जब इसका होता है, जब देखते हैं तो इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार उसको कहते हैं भगवान की अंग कांति का जब दर्शन होता है तो उसको कहते हैं ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार। और कृष्ण का जब दर्शन होता है, राम का दर्शन होता है, नारायण का दर्शन होता है, तो ये भगवत दर्शन है, साक्षात्कार। जब सपरिकर कृष्ण का दर्शन जब होता है तो उसे कहते हैं राधा कृष्ण सबका सहित, कृष्ण का साक्षात्कार। एक एक से सब श्रेष्ठ है। आत्म साक्षात्कार से कुछ लाभ नहीं होता, ब्रह्म साक्षात्कार से कुछ लाभ नहीं होता, संसार से मुक्ति मिल जाएगी बस, किंतु आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए भगवत भक्तों के लीला चरित्र में श्रवण करने में जो आनंद होता है, जैसे कृष्ण के साथ में भक्तों का विहार, सदा वो कृष्ण के साथ में जा रहे हैं, गाय चरने के लिए छोड़ दिया है, गाय चरने जा रही हैं, सदा लोग कृष्ण के कहने से गायों को संभाल रहे हैं, धीरी धीरी नीरी नीरी तीरी तीरी माने क्या तीरी तीरी माने आ जाओ पानी में मत रहो और चूचू पानी पियो पानी बस चूचू करके पानी पीने लग जाती हैं। क्या सखा कोई कहता है प्रभु मैं आपका सखा हो जाऊं और ऐसे ही आप आदेश दे उन आदेशों को मैं पालन कर किसमें इसमें आनंद है इन लीला कथाओं में कितना। और इसलिए यशोदा मैया कृष्ण को उठा बैठा रही हैं। आज तुम उठो बैठो तो और प्रतिज्ञा करो कान पकड़ करके जो मैं चोरी नहीं करूंगा। तो कृष्ण ऐसा करना चाहते हैं किंतु कर नहीं पाते कान नहीं पकड़ते केवल ऐसे ही बैठते। कृष्ण नहीं ना ऐसा नहीं होगा तुम कान पकड़ करके बैठो मतलब उस परम ब्रह्म को यशोदा जी कैसे नचा रहे हैं। और कृष्ण को आनंद हो रहा है कृष्ण को भी आनंद है जो सखा जो सुन रहे हैं जो साधक लोग सुन रहे हैं उनको भी आनंद और सबसे बड़ा आनंद होगा किसमें जब गोपियों के साथ में उनका व्यवहार होगा। इसको सुनकर के भक्त लोग बड़े आनंदित हो जाए भगवान भी आनंदित हो जाते। इस आनंद की उपमा कहीं विश्व में नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मैं आप मुझको देवता बनाना चाहते हैं या ध्रुव लोग लेना चाहते हैं इसे मैं क्या करूंगा इसकी हमको जो जन्म जन्म जहां मेरा जन्म हो वहां पर आपके प्रिय भक्तों का मुझे संग मिले और आपकी और उनके लीला कथाओं को सुनने का मुझे सौभाग्य मिले इससे बढ़कर के और कोई चीज हम लोग भी गोलोक वृंदावन अथवा कुछ नहीं चाहते। ऐसे भक्तों का पहले संग हो और उनके संग में भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करते हैं दिया जापन करें भगवान नाम कीर्तन करें अभी यही चाहते हैं। देवता लोग विमान के सहित फिर नीचे गिर जाएंगे सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके वहीं से गिर जाएंगे जब उनका काल समाप्त हो जाएगा भोग का हो जाएगा। और भक्तों का ऐसा नहीं होता मैं ऐसे भक्तों का संग और ऐसे भक्तों का लीला चरित्र उन भक्तों के मुख से सुनना चाहता हूं। तात्पर्य इसका सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं महत् सकले प्रसंग क्षण में भी जब कृतार्थ आदमी हो जाता है महत् माने ऐसे महत्पुरुषों के संग में जो कथाएं उसी से ही ये यदि ऐसा हो जाता है कृतार्थ तो महत्पुरुषों के संग में साधारण लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है तो महत्पुरुषों के संग में न जाने क्या हो जाएगा। इसलिए महतों के जो अनुगत भक्त हैं उनका भी संग करो महापुरुषों को हम समझ नहीं सकेंगे। सुखदेव गोस्वामी जैसा नंग धड़ंग कोई भक्त आ गया और उल्टी सीधी बोलती है, बोलता है हम समझ ही नहीं सकेंगे। इसलिए उनके जो सेवक जो मध्यम अधिकारी हैं उनका भी संग करो। ध्रुव जी कहते हैं हे कमल नयन हरि आपके चरण कमलों का की सुगंध से जिनका हृदय मकवारा हो रहा है। आप भगवान के चरण कमलों में कैसा सुगंध होता है बहुत सुकोमल है उसे सुगंध निकलता है और उसके साथ में यदि तुलसी मिल जाए ना तो और भी ऐसा उनके चरणों में सुगंध है। और ऐसे सुगंध युक्त चरण कमलों को जो हृदय में ध्यान करने वाले हैं उनका हृदय स्निग्ध हो जाता बड़ा सुगंधित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का महत्पुरुषों का यदि कोई संग करे तो अत्यंत प्रिय अपने इस शरीर को और देह के अनुगत